भाव दीपिका लेक्चर नंबर 18।
ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आययाणं, नमो वैच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, स्वभाव विभाव परभावको सम्यक ज्ञानताकाधारकता सुपुनी नमुचितदरिद्यान।
पंडित श्री जीवचंद जी का आशीर्वाद लिखित यह भावदीपिका नामक ग्रंथ है, उसमें जीव के 5 असाधारण भावों की विस्तार से चर्चा की है। औदयिक भाव के अंतर्गत अभी हम कषाय भाव अंतराधिकार देखने जा रहे हैं। अभी तक कौन कौन से देखे हमने? औदयिक में गति औदयिक भाव और मिथ्यात्व औदयिक भाव, ये हमने दोहा पढ़ा था। अभी हम यहाँ शुरू करते हैं। अब कषाय भावाधिकार प्ररूपीय है। चारित्र मोह कर्म के उदय तय उत्पन्न भयो, देखो ये निमित्त बताया है, चारित्र मोह कर्म का उदय उससे उत्पन्न हुआ, ये निमित्त के अपेक्षा से कथन है। तो ऐसा ही नहीं मानना कि वो कर्म ही हमको सब कुछ कराते, हम तो बेचारे भोले हैं। तो चारित्र मोह कर्म के उदय तय उत्पन्न भयो, सहज ही परम निराकुलित सुख का विध्वंस। ये निराकुलता ही सुख है, और ये परम निराकुलता अपना स्वभाव है, वो सहज है, और उसका विध्वंस करने वाला, नाश करने वाला और महाआकुलता रूप दुख का कारण। निराकुल सुख का विध्वंसक और महाआकुलता रूप उत्पन्न करने वाला, दुख उत्पन्न करने वाला जीव का परद्रव्यनी विषय राग द्वेष भाव सो कषाय कहिए। जीव को दुख उत्पन्न करने वाले कौन है? संयोग है ना। तो क्या है अभी हमने क्या है? परद्रव्य विषय, परद्रव्य के बारे में जो राग द्वेष है, जीव का अपना जो कषाय भाव है, वही महाआकुलता रूप दुख का कारण है, और वही निराकुल सुख के अपने ही निराकुल सुख का विध्वंसक है। परंतु उपाय तो हम राग द्वेष करके उपाय करना चाहते हैं सुख का। जो कितना रहस्य है देखो, इसमें बोले उतना कम है कि हम कषाय भाव करके दुख को मेटना चाहते हैं, तो कषाय भाव इटसेल्फ महाआकुलता रूप दुख है और निराकुल सुख का भी बोल सके।
ये ट्रांसलेशन बराबर किया है उन्होंने,
क्या लिखा है?
आकुलता रूप दुख का कारण जीवों का परद्रव्यों में राग द्वेष का भाव होना।
बराबर, परद्रव्य नहीं विषय, परद्रव्यों में, अने परद्रव्यों
के बारे में,
परद्रव्यों में।
ये जो दूधारी भाषा में विषय जो लिखते हैं
वो में,
उसके बाबत में ऐसा अर्थ होता है, वो में यही सही है।
मैंने परद्रव्यों में राग द्वेष ऐसा करेंगे, या परद्रव्य के बारे में ये हम उसको अधिक एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं।
अब यहाँ जो लिखा है कि परद्रव्यों में जो राग हो रहा है या द्वेष हो रहा है, वो दुख का कारण है। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, स्वद्रव्य में राग का क्या रिजल्ट होता?
स्वद्रव्य में तो राग होता ही नहीं, माने द्रव्य स्वभाव में तो राग होता ही नहीं।
स्वभाव की बात
है, पर्याय में,
पर्याय की बात है,
आकुलता होगी,
वो भी आकुलता स्वरूप ही है, राग है ना। स्वभाव और विषय अभी निराकुल नहीं हुआ है, निर्विकल्प नहीं हुआ है, वो भी राग दुख का कारण।
Itself, जब स्व विषय राग कहता है तो स्व यानी वो मनुष्य पर्याय में और उस संबंधी राग हो रहा है उसको, परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा अगर उसको अनुभव हो जाएगा तो ज्ञान के बारे में राग का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, ऐसा भी ले सकते हैं उसको।
लेकिन अभी मैं मेरे बारे में विशेष मुझे महत्ता आई है और उसके बारे में जो चिंतन चल रहा है राग चल रहा है
हाँ वो विकल्प रूप शुभ भाव रूप जो है
विकल्पात्मक भूमिका
वो भी दुख का कारण
तात्पर्य
नहीं। इसलिए कषाय के मूल भेद तो दो है, एक राग दूजा द्वेष, दोनों ही कषाय है। कहा परद्रव्य निस्सो जो रंजित भाव सो राग है, राग कहिए नहीं राग है, और परद्रव्य नि विषय अनरंजित भाव सो द्वेष है। अनरंजित नहीं उसके प्रति कोई
हाँ।
उसमें असुहावना लिखा है क्या,
दोनों लिखा है
सुहावना। तहा द्वेष कषाय के दो भेद है, क्रोध और मान, ये बहुत बार हमने देखा था क्रोध मान माया लोभ में क्रोध और मान ये द्वेष रूप है, और राग कषाय के दो भेद माया और लोभ। ऐसे कषाय भाव चार प्रकार है, सो इन चारों ही प्रकार कषाय भावनी के उदय स्थानक, उदय स्थानक है ना उदय के अलग अलग वेरिएशंस, उदय में जो तीव्रता मंदता की अपेक्षा जो भेद होंगे उनको कहेंगे स्थानक, क्योंकि अलग अलग जीवों को या एक ही जीवों को अलग अलग समयों में कषायों के मंद तीव्र ऐसे अलग अलग भेद होते हैं, वो तो असंख्यात भेद होते हैं। तो ये कहते हैं यहाँ पर चारों ही कषायों में ऐसे भेद हो गए तीव्रता से मंदता तक। तो उदय स्थानक तीव्रतर तीव्र मंद मंदतर, ये तर शब्द लगाने से क्या होता है अधिकता सूचित करता है, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है ना वैसे तर और तम कहते हैं। यहाँ तो चार भेद किए, सबसे अधिक तीव्र उसको तीव्रतर कहा, फिर तीव्र, फिर उसके बाद मंद और अधिक मंद यानी मंदतर, ऐसे मुख्यतः चार भेद करके बताए। सो एक एक प्रकार में एक एक कषाय के उदय स्थानक असंख्यात लोक प्रमाण, एक एक प्रकार में असंख्यात लोक प्रमाण, टोटल कहेंगे हम असंख्यात लोक प्रमाण क्रोध के भेद है, परंतु तीव्रतर के भी असंख्यात लोक प्रमाण, तीव्र के भी असंख्यात लोक प्रमाण, मंद के भी और मंदतर के भी, या एक एक कषाय में लेना अकेले क्रोध में या एक मान में वगैरह, एक एक प्रकार में एक एक कषाय के उदय स्थान बता ना, प्रत्येक प्रकार में इतने इतने हो गए। सर्व मिली चारों कषाय के भी स्थानक असंख्यात लोक प्रमाण है, वो बड़ा वाला असंख्यात लोक होगा। तातई असंख्यात के भेद बहुत है, इन्हें अलग अलग प्रकार के असंख्यात है, छोटा वाला असंख्यात लोक उससे असंख्यात गुणा ऐसा बड़ा वाला होगा। तहा तीव्रतर स्थानक असंख्यात लोक प्रमाण है, तिनके असंख्यात विभाग असंख्यात लोक प्रमाण तीव्र स्थानक है, यानी सबसे असंख्यात गुणा वो तीव्रतर वाले, तीव्रतर वाले तिनके असंख्यात विभाग जो असंख्यात लोक प्रमाण है ऐसे मंद स्थानक है, और तिनके भी असंख्यात विभाग प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण मंदतर स्थानक है, यानी मंदतर से शुरू करेंगे ना तो मंदतर असंख्यात लोक, उससे असंख्यात गुणा मंद, उससे असंख्यात गुणा तीव्र, और उससे असंख्यात गुणा तीव्रतर, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण कषाय भाव है। सो ही इनका कारण चारित्र मोह कर्म ताका भी उदय स्थानक असंख्यात लोक प्रमाण है, यानी कर्म की अपेक्षा से भेद करेंगे हम तो कर्मों में भी जो अनुभाग की शक्ति की अपेक्षा जो अलग अलग वेरिएशंस, अनुभाग तो अनंत हो गए, अनुभागों में तो अनंत स्पर्धक हो गए, परंतु यहाँ उदय स्थानक की बात है, जैसे भाव वैसे उदय स्थानक वहां हो गए, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण। बहुरी गुण वर्णन अपेक्षा यानी स्वभाव वर्णन अपेक्षा चारों ही कषाय क्रोध मान माया लोभ चार चार प्रकार है। ये चारों ही कषाय ने अनंतानुबंधी आदि चार यानी जाति की अपेक्षा चार भेद है उसके, इसलिए चारों ही कषाय करें। कौन कौन से वो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, ऐसे 16 भेद रूप कषाय भाव है। नलिन भाई आप रिपीट करेंगे।
अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ,
हाँ,
अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ,
हाँ जी,
प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ,
हाँ,
संज्वलन क्रोध मान माया
लोभ। तो देखो ये अनंतानुबंधी आगे उसका अर्थ समझाए कि नहीं देखेंगे। ये अनंतानुबंधी शब्द कैसे तैयार हुआ? तो अनंत मिथ्यात्व का भी एक नाम है अनंत, तो मिथ्यात्व के साथ साथ चलता है हैंड इन हैंड, यानी वो तो सम्यक्त्व का भी घातक है। मिथ्यात्व का कार्य सम्यक्त्व का घातक है, तो ये भी सम्यक्त्व का घात करता है, इसलिए उसको अनंत अनुबंधी अनंतानुबंधी कहते। दूसरी प्रकार से वर्णन करना है तो अनंत पर पदार्थों में उसके जो कुछ एकत्व बुद्धि सहित ये जो कषाय चलते हैं, इसलिए भी उसको अनंतानुबंधी कहते हैं। यानी इसका वासना काल भी अनंत काल तक हो सकता है, इसलिए इसको अनंतानुबंधी कहते हैं। अप्रत्याख्यानावरण शब्द कैसे तैयार हुआ? प्रत्याख्यान यानी त्याग, अप्रत्याख्यानावरण
नहीं
किंचित, किंचित त्याग और उसके आवरण, आवरण शब्द है ना, आवरण यानी नहीं होने देता, किंचित भी त्याग नहीं होने देता यानी अनुव्रत भी नहीं होने देते, उसका नाम है अप्रत्याख्यानावरण। हम उसको शॉर्ट में अप्रत्याख्यान कहते हैं, तो उसका सही नाम क्या है? अप्रत्याख्यानावरण, कर्म का भी और जीव के भाव का भी। शॉर्ट में कहना अलग बात है, परंतु वो शब्द कैसे तैयार हुआ है? तो अ यानी किंचित, प्रत्याख्यान यानी त्याग, यानी अनुमात्र जो त्याग है जिसको हम अनुव्रत कहेंगे, उसका आवरण वो नहीं होने देते, उन कषायों को अप्रत्याख्यानावरण कहेंगे। प्रत्याख्यानावरण किसको कहेंगे? प्रत्याख्यान यानी सकल त्याग, सकल संयम, वो नहीं होने देते उसको प्रत्याख्यानावरण कहेंगे। तो उसका जब घात यानी वो प्रत्याख्यानावरण नहीं रहेगा तब मुनि योग्य सकल संयम होता है। अब संज्वलन किसको कहना? संज्वलन, हाँ देखो, प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान यानी त्याग, आवरण यानी उसको नहीं होने देना, यानी त्याग नहीं होने देना। कौन सा त्याग? मुनि योग्य त्याग नहीं होने देते उनको कहेंगे प्रत्याख्यानावरण। कषायों के नाम है और कर्मों के भी यही नाम है। प्रत्याख्यानावरण हो गया। अभी अप्रत्याख्यानावरण, यानी किंचित, थोड़ा थोड़ा त्याग नहीं होने, यानी थोड़ा भी त्याग नहीं होने देते। प्रत्याख्यानावरण में क्या? सकल त्याग, यानी पूरा संयम नहीं होने देते, वो प्रत्याख्यानावरण। और थोड़ा भी अनुमात्र भी नहीं होने देते, यानी अनुव्रत भी नहीं होने देते, वो क्या है? अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण के उदय में सम्यक तो हो सकता है, परंतु उसके कोई व्रतादि नहीं है। तो ये हमने 16 भेद देखे।
संज्वलन का बारे में आपने नहीं?
हाँ, संज्वलन का अर्थ है संज्वलन, मंद मंद ज्वलन, यानी उसका उदय भी हो और सकल संयम तो चालू रहे, परंतु वो क्या है, उसका कार्य क्या है? यथाख्या चरित्र नहीं हो, यानी पूर्ण वितरागता नहीं होने देते, वो है संज्वलन। ज्वलन यानी वो तो कषाय का कार्य तो चल ही रहा है वहां पर, तो इसको कहते चार चौकड़ी। चौकड़ी यानी एक एक में क्रोध मान माया लोभ चार चार प्रकार है, तो ये चारों ही कषाय चौकड़ी, इसको 16 कहेंगे। तो मिथ्या दृष्टि के सभी है, अनंतानुबंधी भी है, अप्रत्याख्यान भी, प्रत्याख्यान भी और संज्वलन भी, चारों ही कषाय चौकड़ी का उदय है। फिर आगे हम देखेंगे चौथे गुणस्थान वाले को अनंतानुबंधी नहीं है, विषम्य दृष्टि हुआ है, तो उसके तीन कषाय है, तीन कषाय चोपड़ी। पांचवें गुणस्थान वाले को दो नहीं है, दो है, यानी अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण नहीं है, उसका उदय नहीं है। उदय किसका है? प्रत्याख्यानावरण और संयोजन। फिर छठा सातवां गुणस्थान और ऊपर के गुणस्थानों में संज्वलन का है, अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हम स्थूल रूप से कहेंगे। परंतु तीन कषाय चौकड़ी का वहां अनुदय है, अभाव भी कहेंगे हम द्रव्यान योग में, तो उसका अभाव कहेंगे, मतलब उसका उदय नहीं है। उसकी एग्जैक्ट क्या, और हम कषाय की बात करेंगे तो है ही नहीं वहां कषाय, जीव को वो कषाय हो नहीं रहे। कर्मों की बात करेंगे तो अनुदय कहेंगे, कषाय के बारे में उसके वो कषाय उस समय नहीं हो रहे ऐसा कहेंगे। सो जैसे एक एक अनंतानुबंधी आदि भेद, अनंतानुबंधी आदि जब कहेंगे तो अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण संयोजन आदि भेद, क्रोध मान माया लोभ, इन चार चार कषाय रूप प्रवर्तय, तैसे ही एक एक भेद नौ कषाय भाव रूप प्रवर्तय। ये नौ कषाय के नाम कौन से? लक्ष्मी बहन, शोक भय जुगुप्सा, तीन वे। ये जो नौ कषाय है उसमें भी ऐसे हो गए ना, अनंतानुबंधी के साथ वाले और फिर अप्रत्याख्यानावरण जैसे, प्रत्याख्यानावरण जैसे, संज्वलन जैसे, यानी उसमें भी तीव्रता मंदता के भेद हो गए। तो यहाँ कहा वैसे ही एक एक भेद, भेद किसको कहना? अनंतानुबंधी आदि भेद हुए, वो भेद नौ कषाय भाव रूप प्रवर्तय है। जो नौ कषाय के भेद, नौ कौन कौन से? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद। वो स्त्री हुआ, स्त्री करना, स्त्रीवेद, ढूंढारी भाषा में स्त्री लिखा है, वो स्त्र होना चाहिए। हिंदी में बराबर है ना? ऐसे ही अनंतानुबंधी आदि एक एक भेद के तेरह तेरह भेद हुए। ये तेरह भेद कैसे हुए वीरेश भाई?
हाँ,
क्रोधमान माया लोभ चार और नौ नौ कषाय, हर एक में उन्होंने तेरह तेरह भेद बताए। ताते चार भेदनी के बावन भेद हुए, क्रोधमान माया लोभ ऐसा एक एक के तेरह तेरह और अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण संज्वलन, हर एक के तेरह तेरह। तहां तीव्रतर और तीव्र स्थानकनी का एक भाग बिना बहुभाग विषय तो अनंतानुबंधी आदि चारों भेद प्रवर्ते हैं। यहां क्या कहते हैं? तीव्रतर जो स्थानक है, किसकी किसके है? क्रोध के भी, मान के भी, माया के भी, लोभ के भी। तीव्रतर और तीव्र स्थान, अभी उसको जरा समझाएंगे हम, जरा मुझे स्लाइड देना। देखो तीव्र से मंदतर, हम चार चार प्रकार है, तीव्रतर, तीव्र, मंद और मंदतर।
तीव्रतर सबसे बड़ा है।
तो तीव्रतर और तीव्र स्थानकनी का एक भाग बिना बहुभाग, ये तीव्रतर के सभी। फिर हम चार चार वेद करेंगे, तीव्रतर और तीव्र में एक भाग बिना बहुभाग, एक भाग छोड़कर बहुभाग, यानी ये कैसे अधिक प्रमाण वाले, तीव्र वाले। इसमें तो अनंतानुबंधी आदि चारों भेद प्रवर्त है, यानी संज्वलन के भी ये स्थान तो हो गए। क्या कहा? नहीं समझे? सबसे तीव्र अनुभाग है, सबसे तीव्र अनुभाग से ये सारे ये तीव्रतर और फिर ये तीव्र के बहुभाग, इतने स्थान तो सबके है, यानी चारों के ये स्थान पाए जाएंगे। हमें तो ऐसा लगता है खाली अनंतानुबंधी के ये हो गए, तो पहले गुणस्थान में संजोलन के ये हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि संजोलन में भी ये सब तीव्रतर शक्ति में मैक्सिमम शक्ति सबकी समान है, ये स्थान तो सबके है। अभी आगे क्या देखते हो आपको ख्याल में आएगा, तीव्र स्थानक ने का असंख्यात्वा भाग प्रमाण स्थानक और मंद स्थानक विषय असंख्यात बहुभाग स्थानकनी विषय। अब ये जो एक भाग छोड़ा था ना, ये तीव्रतर और तीव्र के बहुभाग सबके है, अब ये असंख्यात्वा भाग और मंद स्थानक में असंख्यात बहुभाग, ये असंख्यात बहुभाग इतने, ये इन तीनों के हैं। ये ऊपर के तो चारों के थे, हाँ ये बाकी तीन के हैं, ये इनके नहीं है। अनंतानुबंधी में तीव्रतर और तीव्र का असंख्यात बहुभाग ये स्थान है, चारों के हैं सबके, तो ये तो तीव्रतर तो सबके है, संज्वलन सहित सबके है, यानी चारों के तो ऊपर के भाग सबका समान है। अनंतानुबंधी के स्थान यहाँ तक ही, अब ये जो तीव्र के असंख्यात्वा भाग और मंद का असंख्यात बहुभाग ये स्थान के इन तीन के है, ये तीन के है। अब उसके आगे देखो, मंद स्थानकनी का असंख्यात्वा भाग प्रमाण स्थानक का सो भी असंख्यात लोक प्रमाण है, ताको असंख्यात का भाग दीजिए जो प्रमाण आवे, तिस एक भाग बिना बहुभाग विषय प्रत्याख्यानादि दो कषाय प्रवर्ते। अभी जो एक भाग छोड़ा था ना, मंद का एक भाग छोड़ा था, उसके भी असंख्यात्वा भाग लेना है, एक भाग का असंख्यात भाग का भी असंख्यात्वा भाग लेना, तो एक भाग बिना बहुभाग में प्रत्याख्यानादि दो, यानी इसमें दो हो गए, संज्वलन को तो ये दोनों है, प्रत्याख्यानावरण को भी ये दो है, यानी मात्र ये इतना ही स्थान वाले। अब उसके आगे अवशेष एक भाग, इसका अवशेष एक भाग, केवल यहाँ एक भाग छोटा सा छोड़ा था और सारे मंदतर, एक संज्वलन कषाय भाव प्रवर्तक, उसमें एक संज्वलन होगा, यानी अकेला संज्वलन हो, अकेला संज्वलन होगा तो ये मंदतर और मंद का बहुत छोटा भाग, जब दो कषाय चौकड़ी है तो उसमें संज्वलन का भी और इसका भी अनुभाग ज्यादा है, जब तीन कषाय चौकड़ी का उदय है तो इसका अनुभाग और ज्यादा है संज्वलन का, और जो अनंतानुबंधी के उदय सहित जब संज्वलन आदि सभी ये सभी अप्रत्याकन प्रत्याकन संज्वलन, तो वो समान अनुभाग वाले प्रवर्तित है। हमने एक बार आपको कर्मकांड में इसे पढ़कर सुनाया था कि जहाँ अनंतानुबंधी का उदय है वहाँ अप्रत्याकन प्रत्याकन संज्वलन अनंतानुबंधी जैसा कार्य कर रहे, क्या कार्य कर रहे तो सम्यक तो नहीं होने दे रहे, क्यों? उसका कार्य तो क्या है, संयम नहीं होने देना का था, परंतु यहाँ इतना वो तीव्र उसका उदय है कि तो सम्यक कभी नहीं होने देता, यानी जैसा अनंतानुबंधी वैसा ही कार्य ये कर रहा है उसके प्रेजेंस में। अभी चौथे गुणस्थान वाले के साथ जैसा वो प्रत्याख्यान कार्य कर रहा है उतना ही कार्य प्रत्याख्यान और संज्वलन भी कर रहा है, क्योंकि उसके उस मात्रा में उदय चल रहा है। पांचवें गुणस्थान वाले के ये मंद का भी असंख्यात्वा भाग इतना उदय है, तो प्रत्याख्यान और संज्वलन दोनों ही वैसा ही कार्य कर रहे हैं। पांचवें गुणस्थान वाले को जो संज्वलन का उदय है वो भी संयम नहीं होने दे रहा, वो प्रत्याख्यानावरण जैसा कार्य कर रहा है, क्योंकि उसकी जैसे उसके उदय का अनुभव है। और जब अकेला संज्वलन का उदय है तो देशघाती रूप से उदय है वो, हाँ क्योंकि कषाय है ना, इसलिए वो यथा क्या चरित्र नहीं होने दे रहा, पूर्ण वितरकता नहीं होने दे रहा। अभी उसमें भी तीव्र ये मंदतर में भी अनेक भेद है, असंख्यात लोक प्रमाण। अभी जितने ऊपर के गुण स्थानों में चला जाएगा दसवें तक, तो उसका वैसे वैसे अनुभाग मंद मंद उदय होगा। ये अनुभाग की अपेक्षा ये बात बताई उन्होंने। अभी हम आगे देखते हैं जरा। तहां मिला मंदतर स्थानक में संज्वलन भाव प्रवर्ते। उसके आगे अनंतानुबंधी तो जीव के सम्यक्त्व गुण को आवरे है, आवरे है ना, आवरण डालता है का, होने नहीं देता। हाँ अनंतानुबंधी कषाय की यावत प्रवृत्ति हो, यावत यानी जब तक, तावत यानी तब तक जीव सम्यक्त्व को ग्रहण न कर सके। और जो सम्यक्त्व का ग्रहण हो गया हो, जो इन्हें यदि सम्यक्त्व ऑलरेडी हुआ हो तो अनंतानुबंधी कषाय हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो अनंतानुबंधी कषाय भाव की प्रवृत्ति हो तभी सम्यक्त्व भाव का नाश हो जाए ऐसा जानना। किसी के समय दर्शन तो हो गया और हो सकता है ऐसा कोई उसके तीव्र कषाय हो जाए, कैसा तीव्र, अनंतानुबंधी, तो उसका सम्यक्त्व तत्काल छूट जाता है, उसी समय उसका सम्यक्त्व छूट जाता है। बहुरी अप्रत्याख्यान कषाय भाव, ये पूरा आवरण शब्द नहीं डालना, परंतु उसको क्या समझना, अप्रत्याख्यानावरण कषाय। देश संयम गुण को आवरे है, यानी देश संयम नहीं होने देता, उसको आवरे है का। बहुरी हाँ बिल्कुल, नहीं ऐसा नहीं, कर्म का उदय हुआ इसलिए सम्यक तो छूट गया ऐसा नहीं कहा। अनंतानुबंधी कषाय भाव हुआ, जब उस भाव हुआ होता है तो सामने कर्म पड़े ही है, उसका उदय भी शुरू हो जाता है तत्काल उसी समय। एक ही समय में जीव का भाव हुआ और कषाय का उदय हुआ, ये कर्म का उदय हुआ। ऐसा नहीं कि कर्म का उदय हुआ इसलिए जीव को कषाय करना पड़ा, ऐसा नहीं है, एक समय में दोनों होते हैं। और कार्य जीव में हुआ है तब सामने निमित्त रूप से वो हाजिर है बस। बहुरी अप्रत्याख्यान कषाय भाव देश संयम गुण को आवरे, ये पढ़ा हमने। बहुरी प्रत्याख्यान कषाय भाव जीव के सकल संयम को आवरे है, यानी सकल संयम नहीं होने देते। बहुरी संज्वलन कषाय भाव जीव के यथाख्यात चारित्र को आवरे है, ऐसे ये जीव के चार गुण के चार प्रतिपक्षी कषाय है। चार गुण कौन कौन से बताए, हाँ वीरेश भाई चार गुण कौन से बताए, हाँ हाँ बोलो, कौन बोल रहे आप बोल रहे, हाँ बोलो,
हाँ
बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ आपको जब प्रश्न नहीं पूछते ना तो आप बहुत अच्छा उत्तर देते हैं,
बोलते जाते
आता तो सब है। आपको आज मैंने एक भी प्रश्न नहीं पूछा, आपने सब प्रश्नों के उत्तर दिए। अच्छा है गड़बड़ी हो जाती है, जब टेंशन नहीं होता तो सहज आ जाता है ना। हाँ तो ज्यादा उत्तर देंगे वो। यहाँ गुण कहिए, सम्यक्त्व देश संयम सकल संयम और यथाख्यात संयम, और उसके घातक जो है प्रतिपक्षी कषाय। अब कहे जे अनंतानुबंधी आदि चार भेद, तिनके विशेष 52 भेद। ये 52 भेद कैसे हुए नरेंद्र भाई,
अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान और संज्वलन के चार 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 16 और 9 कषाय हरेक के, वो पकड़ गए सब
मिलते
एक एक में 13 तिरचक 52 करो, या फिर 16 और फिर उसका 9 चौक 36 करो। ये 52 भेद, तिनका स्वरूप, तिनकी प्रवृत्ति, तिनका कार्य, इनकी प्रवृत्ति रूप कार्य का फल इत्यादि दिखाई है। अब ये सब बताने वाले, क्योंकि उस कषाय के कषाय में जीव की प्रवृत्ति कैसी कैसी होती है और उसमें कार्य उसका क्या क्या हो रहा है और फिर उसका फल भी क्या मिलेगा उसको, उसकी बात यहाँ बताएंगे। तहां अपना स्वरूप जो ज्ञाता दृष्टा भाव, क्या है अपना स्वरूप? किसका? जीव का, मेरा अपना। ताते छुड़ाए और परस्वरूप जो राग द्वेष भाव तारूप करे सो कषाय। कषाय शब्द कैसा है? कसति, दुख देता है। हाँ, या ऐसा भी गोमर सार में कहा है कि जो खेत के पहले संवारते हैं ना, वहाँ धान अनाज उगाने के पहले, बीज बोने के पहले उसको संवारते हैं, कसते हैं खेती को। एक कृषि शब्द है ना, और ये किसान, तो ये कसते हैं जमीन को। तो ऐसे ही ये कषाय क्या करते हैं? ये संसार रूपी फल उगाने के लिए वो जीव के तैयारी करते हैं। तो अपना स्वरूप जो ज्ञाता दृष्टा भाव ताते छुड़ाए और परस्वरूप जो राग द्वेष भाव तारूप करे सो कषाय कहिए, उसको कषाय कहना। अब तिस कषाय के वशवर्ती भये जीव, किसी ने कर्मों ने उसको वश नहीं किया है, स्वयं उस राग द्वेष रूप भावों के वशवर्ती हुए हैं। परद्रव्यनी विषय किसी को इष्ट कल्पे है, क्या कहा? कोई उसको इष्ट है ना, क्या होता है? कल्पना करता है। तो किसी परद्रव्य ने, विषय ने किसी परद्रव्य में इष्टपना की कल्पना करता है और वो किसी को अनिष्ट कल्पे है, ये उसकी अपनी कल्पना है, इष्टता और अनिष्टता। जिनको इष्ट कल्पे है 300 राग भाव करे है, तो हमें जिसके जिसके प्रति राग भाव है ना, तो उसको हमने इष्ट माना है। सबसे पहले किसकी याद आती है? वैसे की 300 राग भाव करे, और जिनको अनिष्ट कल्पे है 300 द्वेष भाव करे है। बहुरी, जिनको इष्ट कल्पे है तिनके साधकनी सो राग करे। साधक ने साधन, देखो हमें क्या अच्छा लगता है, मिष्ठान या पंचेंद्रियों के भोग अच्छे लगते हैं, तो उसके जुटाने का साधन क्या है? तो पैसा साधन है, इसलिए पैसा भी इष्ट लगता है। उसके द्वारा हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं, मानते हैं, क्योंकि हमने कल्पना की है, इष्ट की कल्पना की है, और वो इष्ट की प्राप्ति हमें पैसे से होते हुए दिखाई देती है, इसलिए वो पैसा इष्ट लगता है। उसके जो इष्ट लगता है, जिनको इष्ट कल्पे है, जिसमें इष्टपना की कल्पना है, उनके जो साधक है ना, साधन, उसको प्राप्त करने के जो साधन है, उसमें भी इसको राग होता है। गौरी, जिनको अनिष्ट कल्पे है तिनके साधक सो द्वेष करे हैं। ऐसे ही उत्तरोत्तर राग द्वेष करता संता, क्या कहे? करता हुआ। उत्तरोत्तर ने भी वो साधन पैसा, अभी पैसा किसे मिलता है? व्यापार धंधा, तो व्यापार के प्रति उसको राग हो जाता है। ये वो तो, हाँ वो खोटा, अभी उसके जो उसके उपाय अभी ढूंढना, तो उसके भी उसमें भी इष्टता हो जाएगी, और उसको रोकने वाला कोई बीच में आए तो उसकी प्रति अनिष्टता हो जाएगी, द्वेष हो जाएगा। इसलिए कहते उत्तरोत्तर, यहाँ तो एक ही बात बताई उनको, जिसमें इष्ट की कल्पना की है, उसके जो साधन है उसमें इष्टता लगती है, उसके राग होता है, और वो साधन के भी जो कोई जुटाने के कोई तरीके होंगे उसमें भी इसको राग होता है। ऐसे ही उत्तरोत्तर राग द्वेष करता संता ने करता हुआ उत्पन्न भई जो आकुलता भाव को धर्या महा इच्छा, क्या कहते हैं? क्या उत्पन्न हुआ? महा इच्छा। और ये महा इच्छा कैसी है? आकुलता भाव उत्पन्न, आकुलता भाव वाली है। आकुलता भाव को धर्या, यानी आकुलता भाव सहित, भाव से युक्त ऐसी जो महा इच्छा, ताकरी दुखी हो। हम जो दुखी है वो महा अपनी इच्छा से ही दुखी है, इच्छा ही दुख का मूल है, और हम इच्छा की पूर्ति करके सुखी होना चाहते हैं। टोडरमल जी साहब ने तो कितनी प्रकार की इच्छा बताई, विषय की इच्छा, कषायन की इच्छा, वो चार प्रकार बताए ने, हाँ, पुण्य पाप उसके, क्योंकि क्योंकि इच्छा पूर्ति के वो पुण्य से होते तो उसमें भी उसकी भी इच्छा होती है उसकी। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने घटित किया तो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो यहाँ क्या कहते, इच्छा से ही जीव दुखी है। इच्छा नहीं मालूम, इच्छा ने कुछ पाने, हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो कौन से गुण की पर है बोलो, चारित्र गुण की विभाव पर। चाह है ना, चाह पाना चाहता है, लोभ है, ऐसा तो सामान्य इच्छा का स्वरूप है। देखो कितनी बातें उन्होंने, ये पदार्थ इष्ट और अनिष्टता की कल्पना होती क्यों है मूल में, तो अभी हमने क्या है, इच्छा दुख है। इच्छा क्यों, क्योंकि वो तो बाकुलता वाली भाव है। किसकी इच्छा है, कि जो हमारे जो इष्ट जो कल्पना की है उसके जो साधन है या वो साधन के जो उपाय है उसमें हमें राग होता है। राग किसके प्रति होता है, इष्ट के प्रति। तो इष्ट लगता ही क्यों है, कल्पित है, पर क्यों कल्पना हो रही है, भगवान की तो नहीं हो रही है। हाँ हाँ, इष्ट अनिष्ट कल्पना मिथ्यात्व के कारण होता है, मिथ्यात्व और फिर यानी तत्व ज्ञान के अभाव। ये तो बाल बोध में वितराग विज्ञान में लिखा, पर यानी तत्व ज्ञान के अभाव में तो पर पदार्थ इसको इष्ट या अनिष्ट लगते हैं। इष्ट लगते तो राग होता है, अनिष्ट लगते तो द्वेष होता है। तो राग होता है तो उसको प्राप्त करना चाहता है, और द्वेष होता है तो दूर करना चाहता है। वहां भी इच्छा है उसको दूर करने की, वहां भी इच्छा से ही दुखी है, और प्राप्त करने की भी इच्छा, इच्छा से ही दुखी है। तो उपाय कहाँ करना चाहिए था, उसको दूर हटाने या प्राप्त करने से दुखी सुखी होता ना। तो कहते नहीं, इष्टता अनिष्टता जिस कारण से हो रही है उसका वहां उपाय करो, तो ही ये सब सारा आगे का झमेला मिटेगा। तो उसका उपाय क्या है, तो तत्वज्ञान की प्राप्ति। तत्वज्ञान की प्राप्ति से जब मिथ्यात्व भाव नहीं रहेगा तो पर पदार्थों में इष्टता और अनिष्टता की कल्पना नहीं होगी। मिथ्या तो छूटने पर भी कुछ मात्रा में रहेगा तो उसके तो राग के वश रहेगा, परंतु वो अभी वो मिथ्या मान्यता नहीं रहेगी उसकी। बहुरी सो राग द्वेष को धर्या इच्छा चार प्रकार प्रवर्ते हैं। वह इच्छा के भी चार प्रकार बताए, कौन से, अनंतानुबंधी रूप, अप्रत्याख्यानावरण रूप, प्रत्याख्यानावरण रूप और संज्वलन रूप। देखे वो इच्छा तो पूरी इच्छा तो मिटी नहीं, पूर्ण इच्छा तो वितराग, पूर्ण वितराग होने पर मिटेगी, तो जितने सम्यक तो होने पर भी अनंतानुबंधी वाली इच्छा नहीं रहेगी। फिर भी तीन कषाय वहां है तो उस रूप इच्छा रहेगी, इसलिए यहाँ इच्छा के भी चार प्रकार बताए। ये अलग ही प्रकार से पूरा सारा उनका वर्णन है। अनंतानुबंधी कषाय का सामान्य स्वरूप, पहले चारों ही में मिलकर सामान्य बताएं, फिर क्रोध का अलग, मान का, माया का और लोभ का अलग बताएंगे। तहां राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध और धर्म विरुद्ध, ऐसे तीन प्रकार अन्याय रूप कषाय प्रवृत्ति करे सो अनंतानुबंधी कषाय जाना। अभी इसका भी वर्णन करेंगे। कौन सी तीन बातें बताई, हाँ, राज विरुद्ध यानी जो कोई हमारे कानून है, लॉज है, हा? तो उसको तोड़ना, तोड़कर अन्यथा प्रवृत्ति करनी। लोक विरुद्ध, समाज से जो कोई विरुद्ध बात करनी, और धर्म विरुद्ध, अभी इसको समझाएंगे यहाँ पर। तो ऐसे तीन प्रकार क्या कहा उसको, अन्याय रूप कषाय प्रवृत्ति के। देखो जब हमने सम्यक्त्व की प्राप्ति का लिए जिसको योग्यता कहेंगे उसका वर्णन देखा था, क्या था ये देखा, हाँ, अन्याय अनीति और अभक्ष भक्षण का त्याग, और फिर सच्चे देव गुरु शास्त्र का भक्तियां पहले उसको स्वरूप समझेंगे, उसकी भक्ति करेंगे।
इसमें इन्होंने लिखा है अन्यथा रूप लिखा है, अन्याय रूप नहीं लिखा है, अन्यथा रूप लिखा है।
अन्याय तीन प्रकार,
अन्याय रूप,
अन्याय रूप
नहीं, अन्याय रूप,
अन्याय अन्यथा रूप,
वो तो गलत हुआ, अन्याय करो उसको, अन्याय रूप,
अन्याय रूप।
अच्छा हम तीन पुस्तक है तो किसमें क्या है, वो गलत है वो तो निकल जाएगी। अनंत अनुबंधी कशा है, और जो प्रवृत्ति करता संता राजकरी दंड योग्य होए सो राज्य विरुद्ध कहिए। क्या कहते हैं, यानी जिस प्रवृत्ति करते हुए राजा के द्वारा दंड हो सकता है, अभी हम यहाँ राजा नहीं रहे ना तो हम कहीं सरकार, लॉ के अगेंस्ट हो जाता है कि जो दंड योग्य है तो उसको कहेंगे वो राज विरुद्ध कार्य हो रहा है उसका। और जाकर ही लोकनी विषय अपजस हो, अपजस ने अपयश, पंचनी करी दंडनीय हो, पहले तो पंच थे ना, पंचायत गांव में जो होते थे तो पंचों द्वारा जिससे दंड दिया जाता था सो लोक विरुद्ध कहिए। हाँ अनिति कहेंगे इसको, बोरी जो धर्म प्रवृत्ति व लोक प्रवृत्ति राज विरुद्ध व लोक विरुद्ध तो न होए परंतु धर्म विरुद्ध होए सो धर्म विरुद्ध कहिए। तातई जो प्रवृत्ति राज विरुद्ध है सो लोक विरुद्ध भी है और धर्म विरुद्ध भी है। देखो फॉर एग्जाम्पल चोरी करना, चोरी करना तो राज विरुद्ध तो है ही है, लोक विरुद्ध भी है, लोग भी उसको कुछ अच्छा नहीं समझे, और धर्म विरुद्ध तो है ही है। और जो राज विरुद्ध नाही और लोक विरुद्ध ही है सो भी धर्म विरुद्ध तो है ही। जैसे राज विरुद्ध नहीं है, अभी हम इसमें ये सोच सकते हैं कि जो कोई परस्त्री सेवन आदि जो हम करें तो वो तो लोक विरुद्ध तो है ही है, धर्म विरुद्ध भी तो है ही है। वो तो केवल लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध होगा, लोक विरुद्ध तो नहीं है वो। और जो प्रवृत्ति धर्म विरुद्ध ही है और राज विरुद्ध लोक विरुद्ध नहीं सो धर्म विरुद्ध है ही। तहां तीनों ही प्रकार विरुद्ध जैसे राजद्रोह, ये यहां बता रहे, यानी जो राज विरुद्ध भी है लोक विरुद्ध भी है और धर्म विरुद्ध भी, ऐसा क्या क्या है, तो राजद्रोह, स्वामी द्रोह, द्रोह समझते हैं, दगा देना, पहले तो राजा के विरुद्ध कोई कार्य करना, ये राजद्रोह, स्वामी द्रोह, मित्र द्रोह, यानी मित्र को उसको दगा देना, यानी विश्वासघात करना, वहां पहले का उपकार भूली कृतघ्नि होना, इत्यादि ये अनंतानुबंधी के महापाप रूप कार्य है, तिनको करना सो अनंतानुबंधी कही। ये इन जनरल इन शॉर्ट उन्होंने बताया। बहुरी धाड़ा देना यानी डाका डालना, गैला मारना यानी रास्ते में लूट लेना, मनुष्यनी को मारना, गांव मारना, राजकाज बिगाड़ देना, सप्त व्यसन सेवना, राज विषय पराई चुगली खाना इत्यादि। जिन करी राज तय दंड योग्य ते सर्व अनंतानुबंधी के राज विरुद्ध कार्य जानना। कुल जाति रीति सो आप उल्टा चालना, यानी कुल के विरुद्ध, जाति के विरुद्ध, रीति जो कोई लौकिक रीति है उससे विरुद्ध आचरण करना, पितादि का अपमान करना, अपनी बड़ाई करनी, पराई निंदा करनी, अपने वो पर के विवाहादि कार्य बिगाड़ देना, अपने कुटुंब विषय वा पड़ोसी मोहल्ला वा गांव आदि की सो विरोध रखना, कटुक वचन कहना इत्यादि लोक विरुद्ध अनंतानुबंधी जाना, ये लोक विरुद्ध है। यानी किसी के निंदा करने को तो वो राजा तो दंड नहीं दे सकता है, परंतु ये लोक विरुद्ध कार्य है। मिथ्या देव गुरु धर्म आप आगम पदार्थ निको यथार्थ जानना, हमने देखा नहीं मोक्ष के कारण भूत छह पदार्थ है, देव गुरु धर्म आप आगम और पदार्थ, इनमें मिथ्या जो सही नहीं है और यथार्थ जो है, ऐसे जो मिथ्या देव गुरु धर्म आप आगम और पदार्थ को यथार्थ जानना, तिनका यथार्थ श्रद्धान करना, यानी उनको सही मानना, तिनका दान पूजन नमस्कार आदि कर विनय करना, और वो यथार्थ देव गुरु धर्मादि को व आप आगम पदार्थनी को अयथार्थ जानना, अयथार्थ श्रद्धान करना, 300 अयथार्थ प्रवृत्ति करनी, ये सब क्या हुए? धर्म विरुद्ध। इसमें तो कोई राजा दंड नहीं देता है, राजा ही वैसा करते है तो राजा क्या दंड दे? और लोक विरुद्ध भी है, लोक में बहुत सारे अपने अपने मत के फॉलोअर्स है, तो लोक विरुद्ध भी नहीं कह सकते, परंतु ये धर्म विरुद्ध है। अब कैसे? अयथार्थ पूजा करनी, अयोग्य द्रव्य चढ़ावना, अयोग्य अशुद्ध क्षेत्र विषय, रात्रि को आदि दे अयोग्य काल विषय पूजा करनी, देखो क्या क्या कहने थे, अयथार्थ पूजा नहीं, सही पूजा नहीं करनी, अयथार्थ करनी, अन्य मति के देखा देखिए आपने भी वैसे प्रथा चलानी, अयथार्थ पूजा कहलाएगी ना। अयोग्य द्रव्य चढ़ावना, जैसे हिंसात्मक कुछ बलि चढ़ाना दी, ये क्या हुआ? अयोग्य। अब उसकी तो बात छोड़ो, परंतु यहाँ पर भी हम सचित्त वस्तु चढ़ाते नहीं है, अचित्त वस्तु चढ़ाते, तो उसमें भी सचित्त चढ़ाना उसको हम अयोग्य कहेंगे। या कोई अन्य कुछ घर में कुछ मिठाई बनी तो भगवान के सामने जाके मिठाई रखनी, ये क्या हो गया? अयोग्य द्रव्य चढ़ाना। अयोग्य अशुद्ध क्षेत्र में रात्रि को आदि दे अयोग्य काल विषय पूजा करनी, यानी रात्रि में पूजा करनी, पहले चलती थी प्रथा बहुत जगह जगह, ये दशलक्षण के लास्ट 14 का दिन है ना, पूरी रात भर पूजा चलती थी हमारे मंदिरों में, हमने स्वयं की है, हाँ पूरे रात 24 तीर्थंकरों की, एक एक तीर्थंकर की इतनी विस्तार से, 9 बजे रात्रि को अभिषेक होता था मंदिरों में, और पूरी हम तो वहां पर ऐसे कभी इतना कंटा रहता घंटे भर लेट भी जाते थे, पर पूरी रात जागते थे और पूरा समाज इकट्ठा होकर पूजा करते थे, ऐसे घर में नहीं पूरी समाज वहां करते थे, और ये प्रथा गांव गांव में चलती थी, दिगंबरों में ही चलती थी, आपको पता नहीं, आप तो मुंबई जैसे शहरों में रहे ना, गांव में चलता था वो, यानी पूरा बहुत यानी वाद्य बजाकर ऐसे ढोल वगैरह ताल संगीत सहित पूजा चलती थी रात भर, केवल जागरण नहीं है, पूरी अष्टद्रव्य से पूजा चलती थी, हाँ वो अन्य मत में उसको जागरण कहते, वो तो उनके कुछ भजन वगैरह करते हैं, यहाँ तो अष्टद्रव्य से पूजन, रात्रि को अभिषेक होता था, फिर वो पूजन चलती थी, और सुबह 5-6 बजे अंतिम पूजन करके फिर वो सब दोबारा प्रक्षाल करके फिर हम घर जाते, ये रात्रि पूजन का निषेध, तो देने वाले कौन है, हमें लेके जाएंगे हम ही खाएंगे।
अभी भी समझ से कर पारण तो रात को चढ़ते हैं,
नहीं रात को चढ़ना अलग,
4 बजे से
चढ़ते हैं ना
पहले, ये तो अभी अलाउ नहीं करते हैं, पहले तो हम जब जाते थे तो रात को 1:30 बजे चलना शुरू करते थे, देखो पूजन करना और रास्ता चढ़ना,
सुबह में तो लौट के आ जाते थे,
नहीं 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 पहुंचने में 6 बजते थे, डेढ़ बजे चालू करेंगे तो छह साढ़े छह बजे ऊपर पहुंचते थे पहले ही टोक पर। माइल माइल में छह छह माइल हाँ अपने किलोमीटर। तो ये यानी समझ में नहीं, तो रात्रि में पूजन का निषेध निषिद्ध है, परंतु ऐसे प्रथा पड़ी है बहुत चलती है। अपने दिगंबर जैनियों में मारवाड़ियों में होती है रात को दो दो बजे रात में हम गए थे ना। अरे हुकुमचंद मारियो की लड़की की हुई रात को दो बजे हम गए थे वहाँ 69 में गए थे। प्रथा ही है वहाँ पर, वहाँ तो 8-8:30 बजे रिसेप्शन होता है फिर रात को 2 बजे शादी होती है, शादी रात को 2 बजे होती है।
हाँ
वो तो लौकिक बात है, शादी के शादी में तो पूजन का वो विधान होता ही है। अशुद्ध शरीर अशुद्ध वस्त्र अशुद्ध संबंध इत्यादि बाह्य भाव की अशुद्धता सहित पूजा करनी, क्योंकि हम तो स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर स्नान करके वगैरह शुद्ध होकर पूजा करते हैं। और वो अंतरंग भाव क्रोध मान माया लोभ के वहां सुजस बढ़ाई इत्यादि के अभिनिवेश सहित अशुद्ध भाव तीन सहित पूजा करनी। पहले में पहले द्रव्य अशुद्ध है, द्रव्य ने शरीर अशुद्ध है वस्त्र अशुद्ध है उसको द्रव्य की अशुद्धता कहेंगे, और भावों की अशुद्धता है ने क्रोध मान माया लोभ या दूसरे के मैं थोड़ा बड़ा हूं ये दिखाने के लिए पूजा करनी। अभिनिवेश ने अभिप्राय यानी अपना अभिप्राय क्या है कि मैं दूसरों से थोड़ा बड़ा दिखूं इसलिए वो उसके वश होकर पूजा करें। बड़ा यानी वो तो अपने वो कुछ बड़प्पन दिखाने के लिए दूसरों के यानी वहां मान कषाय की पुष्टि करना चाहता है। वहां प्रमाद सहित पूजा करनी, प्रमाद सहित यानी क्या प्रमाद कहिए, प्रमाद का अर्थ क्या है, पूजा के समय स्त्री कथा भोजन कथा राज कथा और चोर कथा ये चार विकथा करनी। हमने पहले प्रमाद के भेद देखे न, कौन कौन से मुख्य भेद, विकथा कषाय पंच इंद्रियों के विषय निद्रा और स्नेह इसको क्या कहेंगे प्रमाद, यही बात यहाँ बताई। तो पूजा के समय स्त्री कथा भोजन कथा राज कथा या चोर कथा ये चार विकथा करनी। वह पूजा समय क्रोध करना मान करना माया करनी लोभ करना। वह पूजा के समय स्पर्श आदि पांच इंद्रियों के विषय पोषणा। वह पूजा समय स्त्री पुत्रादिकनी सौ स्नेह ने मोह करना। ये सब अभी हमने देखे ना, विकथा हुई कषाय हुए पांच इंद्रिय के विषय स्नेह और निद्रा की बात करेंगे अभी। तहा मन विषय पूजा का अनादर भाव धरना व निद्रा सहित होना व मन वचन काय करी अविनय रूप प्रवर्तना उसको भी ले लिया उसके अंदर। पूजा करनी भारी लागे बोझ लगे, पूजा का काल भार्या लागे, पूजा विषय द्रव्य खर्च हो भार्यो लागे, वहां पूजनादि क्रिया विषय तो मन को न ठहरावे, अन्य विषय कषाय के कारिणी विषय मन को बुद्धिपूर्वक दौड़ावे, क्योंकि वो तो चल रही है सामूहिक पूजा चल रही है तो वो तो वहां तो बैठा है और मन यह वहां भटक रहा है ऐसा भी हो सकता है ना। या अभी क्या है वो याद हो गई पूजा है वहां तो चलती है और भावों में कहां कहां घूमना होता है इत्यादि मन करी अभिनय करना। गौरी उस समय चकार मकार आदि वचन बोलना, उसमें क्या लिखा है हिंदी में
कुछ का कुछ वचन बोलना।
अच्छा कुछ का कुछ वचन बोलना, चकार मकार आदि, चकार मकार
इत्यादि मन से अभिनय करना और उस समय कुछ का कुछ चल
पड़ता
है।
केवल प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं, अन्य का कुछ वार्तालाप करना है, चकार मकार हाँ, ये आपस में बातें करना, वार्तालाप करना, उसके बाद आगे बताए थे वहाँ अपने लौकिक विषय कषाय मोह के प्रयोजन का वचनालाप करना। लौकिक विषय कषाय, हाँ वहाँ कौन सी साड़ी कहाँ ली, क्या दुनियादारी की बातें करना, मोह के प्रयोजन का वचनालाप करना, ये अपने बच्चों की बात होगी, मोह के अभी मोह का कुछ भी होगा प्रयोजन, वहाँ अपनी प्रशंसा का वचन बोलना, वहाँ अनादर भाव सो स्तवनादि पाठ पढ़ना, वहाँ स्तवनादि योग्य पाठ तो न पढ़ना, कर्णानुयोग का उपदेश करना, वहाँ चरणानुयोग का उपदेश करना, वहाँ द्रव्यानुयोग का उपदेश करना, वहाँ प्रथमानुयोग का उपदेश करना, वहाँ अपने आप को संबोधन रूप अध्यात्म पाठ इत्यादि पाठ पढ़ना। किस समय? पूजा के समय सके, ये पूजा करते समय वो भाव सहित आदर सहित पूजा करनी चाहिए। वहाँ देव के निकट गुरु के स्तवन का, वहाँ श्रुत स्तवन का, वहाँ धर्म के स्तवन का पाठ पढ़ना, वहाँ शास्त्र के निकट देव गुरु धर्म के स्तवन का पाठ पढ़ना, वहाँ तीर्थंकर के निकट अन्य तीर्थंकर के स्तवन का पाठ पढ़ना, वहाँ प्रत्यक्ष पूजक के निकट परोक्ष स्तवन पाठ पढ़ना, वह अशुद्ध पाठ पढ़ना, ये यहाँ लिया, वह पढ़ता भूल जाना, वह अगला पाछे पढ़ना, पाछला आगे पढ़ना, वह पूर्व पाठ अपूर्ण छोड़ी उत्तर का प्रारंभ करना, वह बहुत सूक्ष्म वचन सहित स्तवन करना, वह बहुत ऊंचा स्वर करी पाठ पढ़ना इत्यादि वचन करी अभिनय करना। इन्हें वचन से अभिनय क्या हो सकता है उसकी बात बताई। अभी इसके लिए इसमें ऐसे कुछ वाक्य है कि उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए, क्या ये अनंतानुबंधी हो सकता है? वैसे तो हम कहते जहाँ देव नहीं है तो हम शास्त्र रखकर भी पूजा करते हैं, और शास्त्र के सामने हम कोई भी अन्य अन्य पूजाएं भी पढ़ते हैं, परंतु उसको तो अनंतानुबंधी नहीं कह सकते। आगे भी हमें वो भोपाल के एक भाई ने प्रश्न पूछे थे, एक ही जिसको कहें ना मंदिरों में बहुत ऐसे अलग अलग मूर्तियां रखी जाती है एक सर पर, वो भी कहीं आगे आएगी शायद, वो भी ऐसी अटपटी लगती थी वहां की, कैसे इसको उन्होंने अनंतानुबंधी कह दिया।
ये तो हमने बच्चों के साथ गुरु की पूजा करना, हम जब मंदिर में जाते हैं तो गुरु का स्तवन नहीं करते हैं, चाहे गुरु बैठे हो तो वो बात अलग
है, बराबर है भगवान के सामने,
हाँ
भगवान के सामने, भगवान के
आचार्य,
हाँ आचार्य
बैठे, आचार्य
मुनि की बात है,
बराबर है,
वहाँ पे तो वो देवगुरु शास्त्र तीनों विराजमान,
हाँ देवगुरु शास्त्र के देखो देव के सामने तो देव गुरु शास्त्र हम इकट्ठी पूजा करते हैं, परंतु यहाँ देव के पूजा के समय गुरु का या शास्त्र का नहीं करना चाहिए।
अर्घ्य भी देते हैं
कभी, हम मुनिराज की पूजा लेते हैं कभी, समय
अभिनय में तीर्थंकर के हमने अन्य तीर्थंकर का स्तवन पढ़ा, वही पूछ रहे हैं वो, हाँ
स्तवन का पाठ पढ़ना या तीर्थंकर के समीप अन्य तीर्थंकर के स्तवन का पाठ पढ़ना,
तीर्थंकर के निकट कहा है, सामने साक्षात तीर्थंकर हो गए तो साक्षात तीर्थंकर हो गए, वो तीर्थंकर की मूर्ति में नहीं लेना है, या ऐसा भी वो प्रथा कैसी है कि पहले उनका अर्घ्य बोला जाता है फिर अन्य के ऐसे ऐसे पद्धति चली है पर इतनी लंबी पूजा करने को यानी सभी पूजाएं बोलने वालों को पहले देव की पकाएंगे फिर गुरु की फिर सरस्वती की ऐसे वो प्रथा थी पहले पर जब हम एक ही पूजा कहते हैं और रोज बदल बदल कर कहते हैं तो हम किसी की भी लेते हैं ना पूजा ऐसे क्योंकि हमें तो ऐसा ही सिखाया गया है ना कि जहाँ देव की मूर्ति नहीं है गुरु भी नहीं है तो शास्त्र सामने विराजमान करके तो हम करते हैं ये बात यहीं पर है अन्यत्र नहीं कहीं पढ़ने को मिली है फिर भी प्रश्न चिन्ह लगता है इसीलिए क्योंकि हम देव गुरु और शास्त्र को तो इकट्ठे स्तवन करते ही है हमेशा और भी कहीं किसी को पूछ रहे ना जब कोई मिलेंगे आपको हम भी पूछेंगे नहीं इस पर प्रश्न चिन्ह पहले भी हमारे हमें भी पूछने वाले मिले इसे हो गया समय ज्यादा रुकेंगे जवानी के ज्ञान ते सूझे